हाँ सही कहा तुमने, ये कहानी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है मेरी जिंदगी की, वो काली हकीकत जिसे कोई नहीं देख सका। पर अब मैं सारी सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। तुम्हारे ही जरिए तुम्हारे बाप का असली चेहरा दुनिया के सामने आएगा। उसके चेहरे पर से सच्चाई और अच्छाई का मुखौटा हटाकर उनके पापों की सजा मैं दूंगा उन्हें। अब तो तुम जान ही गई हो कि क्यों इतनी नफरत करता हूं मैं अमरजीत ठाकुर से। तो ये भी जान लो कि बहुत जल्द मैं इस कहानी का अंत करने वाला हूं, तुम्हारे बाप को बेनकाब करके, उसको बर्बाद करके, उसकी जिंदगी को खत्म करने वाला हूं। और जिस दिन ऐसा हो गया वो दिन तुम्हारा मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुम ये जो अपनी दलीलों और तर्कों से अपने बाप के गुनाहों को छुपाने और उसे मुझसे बचाने की कोशिश कर रही हो ना, इन सब का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, उन सब के आगे तुम्हारी ये दलीलें किसी काम की नहीं है। तुम चाहे अब कुछ भी कहो, पर उससे ना तो तुम्हारे बाप के गुनाह छुप सकते हैं और ना ही अपने इन तर्कों से तुम उन्हें मुझसे बचा सकोगी। जो गुनाह उन्होंने किए हैं उसकी सज़ा उन्हें ज़रूर मिलेगी, और वो सज़ा मैं खुद अपने हाथों से दूंगा उन्हें, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। शान की आंखें अंगारों सी धधक उठी, आंखों के महीन रेशे खूनी रंग में रंग गए। उसकी बातों से और उसका गुस्सा देखकर आरवी का मन भय से कांप उठा, पर उसने अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया और हिम्मत करके आगे बोली, आप गलत समझ रहे हैं, मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही, बस आपकी आंखों पर बंधी नफरत की पट्टी को खोलना चाहती हूँ, ताकि आप सच और झूठ को अपनी आंखों से देख सकें। मैं आपको वही बताना चाहती हूँ जो मुझे लग रहा है, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे लगता है कि सालों पहले जो हुआ उसके पीछे कोई तीसरा है। ठाकुर साहब का ना तो मॉम से कोई गलत संबंध था और ना ही उन्होंने डैड का एक्सीडेंट करवाया था। आप पर जो भी हमले हुए और कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ, उन सब के पीछे कोई और है। किसी ने जानबूझकर दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी पैदा की है, कोई है जो। आरवी ने इतना कहा ही था कि शान ने उसे हाथ दिखा दिया और गुस्से में चीख उठा, बस अब एक और शब्द नहीं सुनना चाहता मैं तुम्हारे मुंह से, खबरदार जो अब एक लफ्ज भी निकाला अपने मुंह से। बहुत पैरवी कर रही हो ना तुम अपने बाप की, आखिर औलाद हो उनकी तो उन्हें बचाने की कोशिश तो करोगी ही। पर मिस आरवी ठाकुर, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं जो तुम्हारे बहकावे में आकर अपने रास्ते से भटक जाऊं। तुम्हारे बाप ने क्या किया है और क्या नहीं, ये जानने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सालों पहले उनके असली रूप को देख चुका हूं। तुम चाहे कितनी ही दलीलें क्यों ना दो, पर अपने बाप के गुनाहों को ना तो छुपा सकती हो और ना ही मिटा सकती हो। उस आदमी को उसके हर गुनाह की सजा अब मिलकर ही रहेगी, और अगर तुमने मेरे और उनके बीच आने की कोशिश की या अपने बाप की सिफारिश की मेरे सामने, तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता भी है, और अभी इसी वक्त तुम्हें अपनी जिंदगी और अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद चली जाना अपने बाप के पास और उसकी बर्बादी के साथ अपनी तबाही भी देखना, क्योंकि मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरे और मेरे बदले के बीच जो भी आएगा उसे भी वही सजा मिलेगी जो अमरजीत ठाकुर को मिलेगी, सजाए मौत। शान इस वक्त साक्षात महाकाल का रौद्र रूप लग रहा था। वो ना तो कुछ सुनने को तैयार था और ना ही समझने को। उसके सर पर खून सवार था और उसे बस अपनी नफरत और बदला नजर आ रहा था, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने और कुछ भी करने को तैयार था। आरवी स्तब्ध सी उसे देखती ही रह गई। वो ये तो जानती थी कि शान ठाकुर खानदान को बर्बाद करना चाहता है, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अमरजीत ठाकुर को मारना चाहता है। उस पर शान ने उसे खुली चेतावनी दी थी, या ये कहें कि धमकी दी थी कि अगर वो बीच में आई तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगा। आरवी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं होता, पर वो आंखों के सामने था, उससे मुंह मोड़ना भी मुमकिन नहीं था। आरवी ने जितना सोचा था बात उससे ज्यादा बिगड़ चुकी थी, और ऐसे समझाने का कोई फायदा नहीं था। अगर अब शान को रोकना था तो उसका एक ही रास्ता था, और वो था हकीकत को सामने लाना, जिसके आसार दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहे थे। आरवी कुछ पल खामोश सी उसे देखती रही, फिर लाचारगी से बोली, मुझे बेहद अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप अपनी नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि आपको या तो कुछ नजर नहीं आ रहा या आप कुछ देखना ही नहीं चाहते, इसीलिए आंखों के सामने मौजूद सच्चाई को भी छुटला रहे हैं। मुझे डर तो बस इस बात का है कि जब आपकी आंखों पर बंधी नफरत की ये पट्टी खुलेगी और हकीकत आपके सामने आएगी, तब तक कहीं आप नफरत और बदले की इस आग में अपना सब कुछ जलाकर भस्म न कर लें, कहीं बदले की भावना में इतना दूर ना निकल जाएं कि जब लौटने का सोचें तो सभी रास्ते बंद हो चुके हों, कहीं आप सच्चाई को पहचानने में इतना वक्त न लगा दें कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आप पछताने के सिवा और कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आरवी बोलती रही, परेशान उसकी बात को अनसुना करके तेज कदमों से वहां से चला गया। आरवी की आंखों में आंसू भर आए थे, वो धम से वहीं सोफे पर बैठ गई। शान का सर गुस्से से फटा जा रहा था, वो अपने चेंबर में पहुंचा और पूरी ताकत के साथ टेबल पर अपना हाथ दे मारा। पूरा चेहरा एकदम लाल हो गया, पर शान को दर्द का रत्ती भर एहसास नहीं हुआ। उसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि अपनी क्रोधाग्नि में वो पूरी सृष्टि को जलाकर भस्म कर दे। गुस्से में उसने अपनी मुट्ठियों को कसा हुआ था, हाथ की नशे बाहर उभर आई थी, रक्त का दबाव इतना था कि नशों को फाड़ते हुए बाहर बहने लगे। दिलो दिमाग में आज आरवी की कही बातें और सालों पहले जो हुआ वो सब बातें घूम रही थी। मन में तूफान सा उठ रहा था जो हर बीतते पल के साथ और भी प्रचंड रूप धारण करता जा रहा था। इतना भी आसान नहीं था सालों पुरानी बातों को भुलाकर किसी की बातों पर विश्वास करना। बचपन से जो नफरत उसके अंदर पल रही थी उसे भुलाकर अपना नजरिया बदलकर चीजों को देख पाना संभव नहीं था उसके लिए। शान कुछ पल गुस्से में यहां से वहां टहलता रहा, फिर चेयर पर आकर बैठ गया। चेयर हैंड्रेस पर अपना हाथ रखते हुए उसने सीट के बैक सपोर्ट से अपना सर टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। बाहर आरवी कोशिश करके हार चुकी थी और शान के इरादों को जानने के बाद उसके लिए सच सामने लाना और शान के दिल से नफरत को मिटाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था और उतना ही मुश्किल भी था। आरवी मायूसी वहां सर झुकाए बैठी हुई थी। अभी कुछ देर ही हुई थी कि अचानक ही लाइट्स ऑफ हो गईं और हर जगह अंधेरा छा गया। आरवी पहले तो घबरा गई, फिर उसने सोचा कि बारिश की वजह से लाइट चली गई होगी, इसीलिए उसने अपने फोन की लाइट चला ली। फिर भी वहां घना अंधेरा छाया हुआ था, उस पर बाहर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी जिससे आरवी को डर लग रहा था। आरवी कुछ पल घबराई हुई सी यहां वहां देखती रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस अंधेरे में भी किसी की निगाहें उस पर हैं, किसी के कदम धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ रहे थे। डर के मारे उसने अपने फोन को कस के अपनी मुट्ठी में भींच लिया। शान जैसे गुस्सा होकर गया था उसके पास जाने से भी आरवी को डर लग रहा था और यहां अकेले रहने से तो डर के मारे उसके प्राण सूखने लगे थे। उसने बहुत हिम्मत की, फिर खुद से ही बोली, आरवी यहां रहकर डर के मारे तुझे हार्ट अटैक आए, इससे तो अच्छा होगा कि तू उस ज्वालामुखी के पास ही चला जाए। आरवी ने मन ही मन निश्चय किया और जैसे ही सोफे से उठने लगी किसी की मजबूत हथेली ने उसके मुंह को भींचते हुए उसको सोफे से सटा दिया।
आरवी एकदम से घबरा गई और अपने मुंह से उस हाथ को हटाने की कोशिश करने लगी। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज, आई एम बैक मिसेज आरवी मल्होत्रा। ये आवाज सुनकर आरवी की आंखों की पुतलियां फैल गईं। इतने में उस शख्स की आवाज एक बार फिर उसके कानों में पड़ी, स्वीट हार्ट लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। पहचानोगी भी कैसे, बहुत वक्त हो गया मुझसे मिले, मेरी आवाज सुने तो शायद भूल गई होगी, पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब याद दिला दूंगा, सब कुछ जो भी हमारे बीच था। वेहान बजाज नाम तो याद होगा कि तुम्हारा पुराना आशिक, तुम्हारे हुस्न का दीवाना, तुम्हारे जिस्म का तलबगार, तुम्हारा मंगेतर जिससे शादी का वादा करके तुमने वादा खिलाफी की, मुझे धोखा देकर शांतनु मल्होत्रा से शादी कर ली, तुम्हें क्या लगा इतने आसानी से मुझसे पीछा छुड़ा लोगी। नो स्वीट हार्ट, वेहान बजाज से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, एक बार मेरी नज़र जिस पर चली गई उसे मैं अपना बनाकर ही रहता हूँ, और फिलहाल तुम मेरी नज़र में छाई हुई हो और आज मैं तुम्हें अपना बनाने वाला हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि कौन अपनाता है तुम्हें। ना मैंने तुम्हें मेरे पास आने के लिए मजबूर कर दिया, तो मेरा नाम भी वेहान नहीं। आरवी तो आवाज़ से ही उसे पहचान गई थी, जो आवाज़ एक वक्त पर खौफ बनकर उसके जहन में बैठी हुई थी उसे भुलाना आसान तो नहीं था। कानों में उसकी आवाज पड़ते ही आरवी उसे पहचान गई थी और अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई थी। उसकी बातें सुनकर आरवी के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे, सांसें थम सी गईं, डर से चेहरा काला पड़ गया। पहले दो बार वेहान उसके साथ गलत करने की कोशिश कर चुका था और आज फिर वो उसी गंदे इरादे से उसके पास आया था। उसकी बातें सुनकर आरवी का रोम रोम भय से कांप उठा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और लगातार उससे छूटने के लिए छटपटाने लगी, उसके हाथ को अपने मुंह से हटाने की चिल्लाने की कोशिश करने लगी, पर उसकी आवाज उसके अंदर ही घुट कर रह गई। वेहान ने एक हाथ से उसके मुंह को कस के दबाया हुआ था जिससे उसकी आवाज बाहर नहीं आ पा रही थी, और दूसरी बांह को उसकी कमर पर लपेटते हुए उसने उसको सोफे पर से उठा लिया। फिर उसको घसीटते हुए वहां से लेकर जाने लगा। आरवी बचने के लिए उससे छूटने के लिए लगातार हाथ पैर चला रही थी। टू बी कंटिन्यूड।